छेदीलाल घर जोड़े, हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की कमर तोड़े।
शादी हुए 10 दिन बीत गए हैं। शादी का मीठा लड्डू चखने के बाद गुप्ता परिवार को कड़वे खर्चे को भी चखना पड़ा, जिसका सबसे बड़ा दुख छेदीलाल को हुआ, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई के एक बड़े हिस्से को उनके बेटे और पोते ने एक रात में उड़ा दिया था, जिसकी वजह से छेदीलाल अभी भी अपने बेटे से अंदर से नाराज थे, लेकिन बाहर से नरम हो चुके थे। इसी बीच एक दिन सुबह सुबह शर्मा जी अपनी धर्म पत्नी उर्मिला के साथ मुंह दिखाई की रस्म के लिए छेदीलाल के घर आ पहुंचे।
आइए आइए शर्मा जी, आइए आइए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते।
नमस्ते भाई साहब।
सरिता, अरे देखो कौन आया है।
आई बाबू जी।
आप लोग बात कीजिए, मैं अंदर ही चली जाती हूँ।
सरिता जैसे ही बाहर बरामदे में पहुंची तो उर्मिला चाची को देखकर उसके माथे पर शिकन दौड़ गई कि उर्मिला चाची के तानों का जवाब कैसे देगी। वो तो शुक्र था कि शादी के एक हफ्ते पहले ही उर्मिला चाची वैष्णो देवी दर्शन के लिए चली गई, नहीं तो शादी में जरूर ही कोई रायता फैलाती। सरिता को देखकर उर्मिला चाची ने कहा,
सरिता कहाँ घुसी पड़ी हो?
हम तो यही हैं चाची, आप ही हमको बिना बताए वैष्णो देवी चली गई थी।
अरे ये सब छोड़, विदेशी बहू कहाँ छुपा रखी है?
अभी बुला देते हैं। बिटिया रिया, आप यही रुकिए, हम अभी बुला कर लाते हैं।
दूसरी तरफ शर्मा जी छेदीलाल से मिलकर अपना मकसद पूरा करने में लगे थे।
छेदीलाल जी, आप शादी वाले दिन कुछ बता रहे थे कि पैसे को सेविंग अकाउंट में रख कर मैंने अपना नुकसान किया, मैं उस दिन समझ नहीं पाया था।
हाँ, हम अभी आपको समझाते हैं। आपके पैसे पर सेविंग अकाउंट में ब्याज कितना मिला आपको?
यही कोई 3-4% के बीच मिलता होगा, लेकिन हम शेयर मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते। हम पैसा वहीं लगाएंगे जहां फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिले।
तो FD कर लो, ब्याज अच्छा मिलेगा।
हमने भी उसके बारे में पता किया था, लेकिन बड़े झंझट हैं, पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। अगर इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो वक्त से पहले FD तोड़ने में पेनल्टी भी लगती है और इंटरेस्ट भी पूरा नहीं मिलता। मुझे कोई ऐसा प्लान बताइए कि जब मुझे जरूरत हो तो मैं ATM से पैसे निकाल सकूं।
थोड़ी देर के लिए छेदीलाल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले,
हाँ तो ठीक है शर्मा जी, अब आप एक काम करिए, अपने बैंक जाइए और ऑटो स्वीप फैसिलिटी अपने खाते में ऑन करवाइए, फिर आपके सेविंग अकाउंट में भी फिक्स डिपॉजिट वाला ब्याज मिलेगा।
ऑटो स्वीप फैसिलिटी, ये क्या होता है? सेविंग अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट वाला ब्याज दर, पहली बार सुना, जरा डिटेल में समझाइए इसे।
अच्छा ये बताइए कि आपके सेविंग अकाउंट में कितने रुपए हैं?
यही कोई 10 लाख।
और महीने में कितने रुपए की जमा और निकासी करते हैं आप अपने अकाउंट में?
मान लीजिए कि 50,000 के आसपास, किसी किसी महीने में तो वो भी नहीं करता। लेकिन पहले आप ये बताइए कि इसका ऑटो स्वीप फैसिलिटी से क्या लेना देना है?
बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसा आपने कहा, आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और आप 50,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं करते, तो आप इस केस में 1 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। बाकी बचा हुआ 9 लाख अपने आप फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा, जिस पे आपको फिक्स डिपॉजिट वाला ब्याज मिलेगा।
थ्रेशोल्ड लिमिट, अरे कुछ समझ में नहीं आया।
थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब वो राशि जो आपको लगता है कि हर महीने इससे ज्यादा आप अपने खाते से नहीं निकालेंगे। इसमें आप अपनी लिमिट खुद बनाओगे, जैसे हर महीने आपके राशन की एक लिमिट होती है ना, कि आपको इतना किलो चावल ही लगेगा या इतना किलो आटा ही लगेगा, उससे ज्यादा तो कभी नहीं लाते ना।
लेकिन कभी इससे ज्यादा की जरूरत पड़ गई तो?
अरे सब्र करो, बता रहा हूँ, सुनो। तो सबसे पहले समझो ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या है। तो तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख है, उसमें से तुमने थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख की तय कर ली, तो बचे हुए 9 लाख की बन जाएगी तुम्हारी FD। फिर 1 लाख पर मिलेगा सेविंग वाला ब्याज और 9 लाख पर मिलेगा FD वाला ब्याज। इतना समझे समझे कि नहीं समझे है? कोई सवाल है आपका?
नहीं नहीं इतना समझ गया।
अब अकाउंट में 1,00,000 है, तुमने अपने अकाउंट में मान लो 50,000 रुपए जमा किए, तो ये तुम्हारी 1,00,000 से अधिक राशि हो गई है। तो ये 50,000 की राशि अपने आप एक FD बन जाएगी और फिर इस पर भी तुम्हें FD वाला ब्याज मिलेगा और तुम्हें तो और ज्यादा ब्याज मिलेगा क्योंकि तुम तो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हो शर्मा जी।
अरे वाह क्या बात बताई है आपने, ये सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन पैसे निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? अगर मुझे अचानक 2-3 लाख की जरूरत पड़ गई तो हाथ के हाथ पैसे मिल जाएंगे ना?
अरे बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पैसे जब चाहो निकाल लो अपने ATM कार्ड से बिना किसी दिक्कत के है? और अगर तुम्हें थ्रेशोल्ड लिमिट से अधिक यानी 1,00,000 से ज्यादा पैसे निकालने की जरूरत पड़ी, मान लो 4,00,000, तो 1,00,000 सेविंग अकाउंट में है, एक्स्ट्रा जो 3,00,000 चाहिए होगा उसमें से वो जो आपकी 9,00,000 की FD बनी हुई थी ना उसमें से 3,00,000 अपने आप सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और फिर आपके FD में बचेंगे 6,00,000। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जो थ्रेशोल्ड लिमिट यानी पैसा निकालने की राशि तय की है ना उससे ज्यादा पैसा बार बार मत निकालना, नहीं तो ब्याज दर कम हो जाएगा।
हाँ समझ गया।
और हाँ, ऑटो स्वीप फैसिलिटी तुम्हारे बेटे के लिए भी एकदम सही है, उसे भी कह दो ऑटो स्वीप फैसिलिटी लेने के लिए, क्योंकि उसकी तो फिक्स जॉब है तो फिक्स सैलरी आती होगी, तो इस सुविधा से वो अपने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़ा ब्याज दर ले सकता है। बाकी इस फैसिलिटी के बारे में बैंक वाला तुम्हें और अच्छे से समझा देगा कि कितना ब्याज मिलेगा तुम्हें और क्या सही रहेगा, तो उनसे बात कर लेना।
आपने सही कहा छेदी लाल जी, थैंक यू सो मच। हम अभी अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात करके आते हैं और बेटे को भी बताते हैं। उर्मिला तुम घर चली जाना, मैं बैंक जाकर आता हूँ।
इधर सरिता के साथ साथ उर्मिला भी रिया के कमरे में पहुंच गई। रिया को कमरे में सोते देख सरिता ने मामले को संभालते हुए कहा।
आंख लग गई थी बहू की।
रिया ने झट से उठकर उर्मिला चाची का बड़े आदर भाव से चरण स्पर्श किया।
प्रणाम दादी जी।
खुश रहो बेटी, ये लो मुंह दिखाई का शगुन, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और जल्दी से तुम्हारी गोद भर दे।
जाओ रिया बेटी, चाची के लिए चाय बना कर लाओ।
जी अभी लाई मम्मी जी।
बहू तो ठीक है लेकिन दहेज कितना मिला है?
दहेज तो पाप है ना चाची, दहेज लेके हमको पापी थोड़ी ना बनना है। हम तो इनकी अम्मा से सीधे बोल दिए कि हमको दहेज थोड़ा भी नहीं चाहिए।
ऐसा क्या, पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पिट गया है कि छेदी लाल जी अपने पोते की शादी करके बहुत पछता रहे हैं, लव मैरिज में लड़की के अलावा उन्हें कुछ ना मिला।
बोलने वाले तो कुछ भी बोले, जितने मुंह उतनी बातें चाची, लेकिन हमें अपनी बहू और बेटे पे गर्व है, नया खून है, नई सोच है।
सही बोल रही हो सरिता, काश हमारी बहू भी कमाती तो घर के खर्च में हाथ बटाती।
अब क्या कर सकते हैं चाची, सब ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा आप बैठो और बहू के हाथ की चाय पी कर जाना, हम जरा छत पर कपड़े सुखा कर आते हैं।
आज नहीं फिर कभी चाय पी लूंगी, घर में बहुत काम पड़ा है, चलती हूँ।
अच्छा ठीक है, नमस्ते चाची।
खुश रहो।
सरिता देवी ने तो बड़ी चालाकी से अपना बचाव कर लिया, लेकिन बरामदे में बैठे छेदीलाल अपने परिवार की फिजूल खर्ची को बचाने में खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, जबकि उन्होंने शर्मा जी को तो समझा दिया इन्वेस्टमेंट का पार्ट, लेकिन अपने घर वालों को नहीं समझा पा रहे हैं। तभी दूर ड्राइंग रूम में रखे मोबाइल फोन की घंटी बजी। दो बार बजने के बाद जब किसी ने फोन को नहीं रिसीव किया तो छेदीलाल खुद फोन उठाने चले गए। उन्होंने बिना देरी के फोन उठाया।
हेलो।
हेलो सर, राजीव बोल रहा हूँ कार शोरूम से। है? आपकी कार आ चुकी है, आप डिलीवरी लेने कब आ रहे हैं?
अरे हमने कोई कार वार बुक नहीं की थी।
आप राजेश्वर गुप्ता बोल रहे हैं ना?
नहीं मैं उसका बाप बोल रहा हूँ।
सॉरी सर, वो आए तो प्लीज कहिएगा इसी नंबर पर कॉल करें। ठीक है थैंक्स।
राजेश्वर।
छेदीलाल के सुझाव और बैंक की सुविधा से शर्मा जी अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके सही ब्याज दर उठाने में कामयाब हो गए। शर्मा जी की तरह आप भी अपने बैंक खाते में ऑटो स्वीप फैसिलिटी को ऑन कराकर सेविंग ब्याज दर से अधिक ब्याज दर उठा सकते हैं। ऐसी तमाम फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी जानकारी के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ जानकारी लिसनर से साझा करना चाहते हैं तो वो भी जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।